थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। आसमां बनाया परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। नीचे धरती ऊपर आसमां बनाया है परमेश्वर है वो, उसके गुण गाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। फिसले ना कभी कदम राहों में, इसीलिए ना सोता दिन रातों में। इज़राइल का सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, तुझे बचाएगा, रक्षक बनकर प्राण संभालेगा। कष्टों से यीशु मुझे बचाएगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आके अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा, मैं आके अपनी पर्वत
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने प्रिय मित्र और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मेरे मित्रों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और पिछले अध्ययन में हमने देखा नए यरूशलेम के बारे में, उसके नींव के बारे में, और हमने उसके मणि और रत्नों के बारे में देखा। आज हम अपने अध्ययन के क्रम में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 पद से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर और मधुर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि हर एक श्रोता भाई बहन आपके वचन को सुनकर अपने जीवन में ग्रहण करने पाए, आपको महिमा और आदर देने पाए। आज के वचन के द्वारा हम सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय में आते हैं और हम लोग देखेंगे आज नया संबंध मनुष्यों में और परमेश्वर का वास। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 22 और 23 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। उस नगर में सूर्य और चांद के उज्याले की आवश्यकता नहीं क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उज्याला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है। परमेश्वर इस नई सृष्टि को सीधा अपनी ज्योति से प्रकाशमान करेगा। पुराने सृष्टि में पाप के आगमन के कारण ने अपनी उपस्थिति यहां से हटा ली थी। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय उसके 2 पद में लिखा है, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, अतः परमेश्वर ने सूरज बनाया, वह हमारे लिए सड़कों की बत्तियां जैसा ही था। परंतु नई सृष्टि में पाप नहीं होगा, अतः परमेश्वर स्वयं ही ज्योति का स्रोत होगा आज प्रभु यीशु आत्मिक परिप्रेक्ष्य में जगत की ज्योति है, जैसा लिखा है यूहन्ना के सुसमाचार 8 अध्याय के 12 पद में। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे श्रोता मित्रों, नई सृष्टि में वह भौतिक एवं आत्मिक ज्योति दोनों ही होगा। मिलाप वाले तंबू में एक सोने की दीवट थी जो प्रभु यीशु का सर्वोत्तम प्रतीक है। नए यरूशलेम में वह स्वयं दीवट है। संसार की जातियां उस पवित्र नगर में ऐसे प्रवेश करेंगी जैसे याजक आराधना के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करते थे। संसार की सब जातियां और इसराइल नए यरूशलेम में ऐसे प्रवेश करेंगे जैसे महायाजक महापवित्र स्थान में प्रवेश करता था। उन्हें लहू लेकर आने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि मेमना स्वयं वहां उपस्थित होगा। यह कैसा अनुपम चित्रण है। जी हाँ, मिलाप वाले तंबू के स्थान पर इसराइल में जो मंदिर बनाया गया था वह परमेश्वर की महिमा शकीना का पार्थिव निवास स्थान था। यह परमेश्वर और पाप की उपस्थिति के लिए एक गवाही थी। जहां पाप होता है वहां परमेश्वर के निकट आने के लिए मंदिर के अनुष्ठान निभाने पड़ते हैं। तथापि नए यरूशलेम में पाप नहीं होगा परंतु उसका भय होगा। वह तो स्मृति से ही बाहर होगा। उद्धार प्राप्त मनुष्यों में परमेश्वर की व्यक्तिगत उपस्थिति के कारण वहां मंदिर की आवश्यकता नहीं होगी। संपूर्ण नगर ही मंदिर के तुल्य समझा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि नए यरूशलेम का आकार मंदिर की महापवित्र स्थान के समान होगा, मंदिर जहां परमेश्वर का वास था। यह संयोग की बात नहीं है। ज्योति के इस नगर में परमेश्वर उपस्थित है और पाप का नाम नहीं है, अतः किसी इमारत की वहां आवश्यकता नहीं है। सांसारिक मंदिर परमेश्वर की उपस्थिति का एक दुर्बल प्रतिनिधि था। नए यरूशलेम में वास्तविक कर्ता व्यक्तिगत रूप से या रूप में परमेश्वर है। यह पहला स्थान है जहां परमेश्वर अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति को प्रकट करेगा। यह कैसा महिमामय भविष्य है। मेरे मित्रों, नया यरूशलेम में सूर्य चांद जीवन और ज्योति से अलग आत्मनिर्भर होगा। यह पृथ्वी की स्थिति से कैसा विपरीत है जहां मनुष्य सूर्य और चांद पर निर्भर है। यह भी हो सकता है कि उस समय सूर्य और चांद अपने प्रकाश के लिए इस नगर पर निर्भर हों, क्योंकि जीवन और ज्योति का स्रोत इस नगर में वास करेगा। वहां प्रकाश के लिए बिजली की कंपनी नहीं होगी। उसकी महिमा का प्रकाश नए यरूशलेम में आबादित विसर्जित होगा, अर्थात किसी भी रुकावट के बिना बिजली वहां पर होगी, प्रकाश वहां पर होगी और इस रीति से चारों तरफ उजियाला होगा। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे नई सृष्टि का नया केंद्र। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 24 पद में आगे लिखा है, जाति जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। लिखा है जाति के लोग उसकी ज्योति में चले फिरेंगे। यह नहीं लिखा है कि वे वहां रहेंगे, वे उसकी ज्योति में विचरण करेंगे। दूसरे शब्दों में सूर्य और चांद की अपेक्षा नया यरूशलेम पृथ्वी को प्रकाश देगा। आगे लिखा है और पृथ्वी के राजा अपने अपने तेज का सामान उसमें लाएंगे। इसी कारण मैं कहता हूं कि नए यरूशलेम और पृथ्वी के बीच मनुष्यों का आना जाना लगा रहेगा। इसराइल ही नहीं, अनंत काल में प्रवेश करने वाली अन्य जातियां भी वहां आएंगी। वह उनका स्थायी निवास स्थान तो नहीं होगा परंतु वे सब वहां आराधना करने के लिए आएंगे। मेरा मानना है कि उस समय कलीसिया याजकीय सेवा करेगी। कहा गया है कि हम विश्वासियों का याजकीय समुदाय होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 25 पद में लिखा है, उसके फाटक दिन को कभी बंद न होंगे और रात वहां न होगी। यह कहना मूर्खता होगी कि वहां रात न होने के कारण फाटक बंद नहीं किए जाएंगे, अतः वह कहता है कि उसके फाटक दिन को भी कभी बंद ना होंगे। दूसरे शब्दों में वे चाबी कहीं फेंक देंगे, क्योंकि खतरा तो वहां किसी भी प्रकार का नहीं होगा। यूहन्ना के युग में शहर पनाह वाले नगरों के फाटक सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिए जाते थे। शहर के फाटक बंद करने का अर्थ होता था कि बाहर शत्रु की सेना है और उसे प्रवेश करने से रोकने के लिए फाटक बंद किए जाते थे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय के 26 और 27 पद में लिखा है, लोग जाति जाति के तेज और वैभव का सामान उसमें लाएंगे, परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गढ़ने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा, पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। परमेश्वर ने मनुष्य के साथ अपनी सहभागिता का उद्देश्य पूरा कर लिया है। अब उसके पास एक ऐसा स्वतंत्र नैतिक मनुष्य है जो उसकी अनंत उपासना और सेवा का चुनाव करता है। जी हाँ, वहां रात नहीं हो सकती क्योंकि मेमना ही ज्योति है और वह अनंत काल के लिए वहां उपस्थित है। फाटक वहां सुरक्षा की दृष्टि से नहीं बनाए गए हैं। मेरे मित्रों, ध्यान रखें कि ये फाटक मोतियों के हैं। अति मूल्यवान मोती बड़ी कीमत चुकाकर खरीदा गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसके 45 और 46 पद में प्रभु यीशु ने जो दृष्टांत सुनाया था उसमें प्रभु यीशु वह मोती नहीं है कि पापी उसे खरीदे, पापी हैं कि प्रभु यीशु को खरीदने का प्रयास करते हैं। उसके पास तो कीमत चुकाने के लिए कुछ भी नहीं है। सत्य इसके विपरीत है। उस मोती का खरीददार प्रभु यीशु है और वह मोती दुल्हन है। यह बड़ी रोचक बात है कि मोती वास्तव में एक रेत का कण है जो सीप के भीतर प्रवेश कर जाता है और वह सीप उसके चारों ओर अपने शरीर का रस उसके चारों ओर जमा करता जाता है जो अंत में मोती बन जाता है। यूनानी भाषा में इस अति मूल्यवान मोती को मार्गाराइटेस कहते हैं और कलिसिया का नाम मार्गरेट है। प्रभु यीशु ने इस मोती को खरीदने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यह मोती उसके पार्श्व से बना है। किसी ने कहा है, मैं प्रभु यीशु के मन में भाले से बने घाव के द्वारा प्रवेश करता हूं। वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया था और हमारे कुकर्मों के कारण उसे घाव सहने पड़े थे। कलिसिया संपूर्ण अनंत काल में परमेश्वर के सृजित असंख्य प्राणियों के देखने के लिए प्रभु यीशु के अनुग्रह के प्रदर्शन का पात्र होगी। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों के पत्र 2 अध्याय के 7 पद में कि वह अपनी इस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। वे मुझे वहां देखकर कहेंगे, देखो वह मनुष्य नरक जाने वाला था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके लिए मर गया और बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसने प्रभु यीशु में विश्वास किया, उसके पास बस यही था और अब देखो प्रभु यीशु ने उसके लिए क्या कर दिया है। उसने उसे स्वर्ग के योग्य बनाकर उस प्रेमी में ग्रहण योग्य बना दिया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर अपने रत्न तैयार करेगा तब कलिसिया उसका सबसे उत्तम रत्न होगी। आप देखें गलातियों के पत्री 3 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, जब वह अपने रत्न तैयार करेगा तब कलिसिया प्रदर्शन के लिए रखी जाएगी। यही कारण है कि नया यरूशलेम नए आकाश और नए पृथ्वी का केंद्र होगा। मेमने की जीवन की पुस्तक में सब युगों के उद्धार प्राप्त विश्वासियों के नाम लिखे होंगे। जिसका उद्धार मेमने के लहू से नहीं हुआ है वह नए यरूशलेम के फाटकों पर भी आने नहीं दिया जाएगा। उद्धार प्राप्त और खोए हुए मनुष्यों के मध्य एक महान खाई होगी। जी हाँ, उद्धार प्राप्त मनुष्य के मन को पुलकित करने वाला महान आनंद होगा कि वह अनंत काल के लिए प्रभु यीशु की उपस्थिति में रहेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय के 3 पद में प्रभु यीशु ने भी यही प्रतिज्ञा की थी, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। उसकी उपस्थिति में रहना ही स्वर्ग है। प्रकाशित वाक्य पूरा ही प्रभु यीशु के बारे में है। वह परमेश्वर की संपूर्ण सृष्टि का केंद्र है। मेरे मित्रों, हम देख चुके हैं कि इसराइल के उद्धार प्राप्त शेष जन परमेश्वर के इस नगर में निरंतर आते रहेंगे। पद 24 में एक और समूह है जो अपने अपने तेज का सामान वहां लाएंगे। ये उद्धार प्राप्त अन्य जातियां हैं जो अनंत काल तक पृथ्वी पर इसराइल के साथ रहेंगे। ये इसराइल के समान कलीसिया के सदस्य नहीं हैं, क्योंकि वे कलीसिया के उठाए जाने के बाद उद्धार पाएंगे, या जिन्होंने कलीसिया के उदय होने के पहले उद्धार पा लिया था। वे आगंतुक की नाई वहां आएंगे, वे आराधना करने वहां आएंगे। इब्रानियों के पत्री 12 अध्याय के 22 पद में कहा गया है कि वहां स्वर्गदूतों का भी एक असंख्य समूह होगा जो सेवक होंगे। वह नगर विभिन्न नागरिकों का स्थान होगा, वहां विभिन्न नागरिकताओं का समागम होगा और परमेश्वर के सृजित बुद्धिजीवी वहां पर विचरण करेंगे। मेरे प्रियो, इन लोगों में एक भी ऐसा नहीं होगा जो अशुद्धता या पाप लाए। यह नगर कैसा महान होगा! यह तो अदन की वाटिका से भी अधिक अच्छा होगा, क्योंकि वहां शैतान ने झूठ के द्वारा पाप का प्रवेश करवाया था। इस स्वर्गीय यरूशलेम में ना तो कोई झूठ होगा और ना ही कोई झूठा होगा। यहाँ के नागरिक और पर्यटक पाप से मुक्त ही नहीं होंगे, पाप के बोध से भी वंचित हो जाएंगे। वे उन फाटकों से प्रवेश करेंगे जो कभी बंद नहीं होंगे। इस महिमामय नगर का आनंद कलीसिया तक ही सीमित नहीं रहेगा, यद्यपि वे ही वहां के निवासी होंगे। मेरे प्रियो, कैसा सुंदर परिदृश्य है, और मैं इसे व्यक्त करने में असमर्थ हूं। काश आप और मैं ऊपर उठाए जाएं कि इस नगर की महिमा और इसके मुख्य सिंगार को देखें, प्रभु यीशु और अनंत काल तक उसके साथ रहने के महिमामय भविष्य की एक झलक को देख पाएं। इसकी तुलना में यह कुछ भी नहीं है। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 21 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 22 उसके पृष्ठभूमि अर्थात परिचय को देखेंगे, जिसका विषय है जीवन के जल की नदी, जीवन का वृक्ष, प्रभु यीशु के आगमन की प्रतिज्ञा, अंतिम निमंत्रण। यह अध्याय इस महान पुस्तक के अंतिम दृश्यों को प्रकट करता है और हमें परमेश्वर के वचन के अंत में ले आता है। परमेश्वर हमें अपने अंतिम वचन देता है, और क्योंकि ये परमेश्वर के अंतिम वचन है इसलिए इसका महत्व महान है। अब हम मनुष्य की यात्रा के अंतिम चरण में आते हैं। मार्ग कठिन था, अनेक प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले हैं और अनेक समस्याओं का समाधान भी नहीं किया गया है, परंतु मनुष्य फिर परमेश्वर के साथ सहभागिता में अनंत काल में प्रवेश कर चुका है और वहां हर एक प्रश्न का उत्तर है। दृश्य में परमेश्वर की उपस्थिति के साथ बाइबल का आरंभ होता है, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 1 पद। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। यहां परमेश्वर ही संपूर्ण दृश्य में है और उसके हाथ में संपूर्ण नियंत्रण है। उसने कष्ट उठाया, कीमत चुकाई और मर गया, परंतु विजय और महिमा उसी की है और वह संतुष्ट है। यशायाह नबी के पुस्तक 53 अध्याय के 11 पद में इस प्रकार लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। मेरे मित्रों, यही कार्य प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर कर गया है और अब हमारे लिए समय है कि हम उसकी ओर निहारें और उस स्थान पर जाने के लिए यत्न करें जहां पर वह है, ताकि हम उस महान आनंद को प्राप्त कर सकें। मेरे श्रोता मित्रों, इसी के साथ यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार? उसने कई बार तुम्हें खुशी देगा।